भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदकुंदु स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दृष्टि की निर्मलता पर विचार। दृष्टि तब सही बनती है, निर्मल बनती है, जब अपने भीतर वीतरागी भगवान, गुरु और शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और हमें संसार, शरीर और भोगों का वास्तविक स्वरूप समझ में आने लगता है। भले ही हम संसार, शरीर और भोग से मुक्त नहीं हो पाते, लेकिन हमें उनकी वास्तविकता का एहसास हो जाता है। जानना अलग चीज है, भीतर से एहसास हो जाता है कि हाँ ऐसा ही है। अभी तक तो सुनते थे, अब महसूस हो रहा है कि वास्तव में ये संसार, ये शरीर और ये भोग की सामग्री, इसका स्वभाव ही, इसकी तासीर ही ऐसी है कि ये हमेशा दुख में ही कारण बनेंगी। थोड़ी देर के लिए जो सुख जैसा मालूम पड़ता है, वो भी अंततः दुख में ही ले जाता है। और धीरे धीरे वीतरागी भगवान के द्वारा कहे गए सात तत्वों का श्रद्धान, अपने आत्म तत्व का पर पदार्थों से भिन्न स्वरूप भीतर में अनुभव होने लगता है और व्यक्ति के भीतर पड़े हुए जो कर्म हैं, मिथ्यात्व है, वह अनंतानुबंधी कषाय है, वह सब उपशमित होकर के और सम्यक दर्शन के द्वारा उसके परिणामों में निर्मलता आनी शुरू होती है। दृष्टि की निर्मलता यही है। ऐसी दृष्टि की निर्मलता अपन कल से ये मान के चल रहे हैं कि हमारे भीतर आ गई, तब हमारा फर्ज है कि ऐसी दृष्टि की निर्मलता अगर हमें प्राप्त हो गई तो अपने भीतर झांक के देखना चाहिए कि मेरे भीतर जो दृष्टि मिली है वो क्या वास्तव में भय से मुक्त है, शंका से मुक्त है। यदि उसके भीतर अभी भय और शंका मौजूद है तो दृष्टि को और निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं अभी धर्म के द्वारा संसार तो नहीं मांगता हूँ, संसार की सुख सुविधा और भोग तो नहीं चाहता हूँ। धार ब्रश भव सुख वांछा भाने, मैंने धर्म को धारण करके संसार के सुखों की आकांक्षा तो नहीं की। ऐसी आकांक्षा यदि मेरे भीतर है तो ये धीरे धीरे मेरी दृष्टि को, मेरे जीवन को मलिन कर देगी। कर्म परवशे शांते दुखैरन्तिर्तोदये, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धा ना आकांक्षा स्मृता। क्योंकि ये जो संसार की आकांक्षा है वो कर्म के पराधीन है, कर्म के अधीन है। कर्म के उदय में अगर अच्छा कुछ मिलने का होगा तो मेरे पुरुषार्थ से, कर्म के निमित्त से अच्छा मुझे प्राप्त हो जाएगा, और अगर असाता का उदय हुआ, मैं कितना भी पुरुषार्थ करूं अच्छा, लेकिन मेरे लिए उस असाता के उदय में दुख भोगना ही पड़ेंगे। यहां भौतिक जगत में मिलने वाले सुख दुख कर्म के अधीन है। मेरे चाहे न मुझे सुख मिलता है, न मैं किसी को दुख दे सकता हूं, न स्वयं अपने सुख का इंतजाम कर सकता हूं। ये सुख दुख हैं वो कर्म के अधीन है। विशेष रूप से यहां पर संसार में, संसार के सुखों में जिसे सुख मालूम पड़ता है, उसे समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए यह कहा गया है कि अगर सुख मिला भी है तो कर्म के अधीन है। शांते, थोड़ी देर के लिए मिला है, फिर उसके बाद दुख आ जाएगा। ये जो संसार का सुख है वो क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। कर्म पर्व से शांते दुखई रंतृतोदय, यहां जो सुख प्राप्त होता है उस सुख के साथ भी दुख मिला हुआ आता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि कोई शक्कर लगी हुई तलवार को चाटे तो शक्कर की वजह से मीठापन उसे मालूम तो पड़ता है, लेकिन उसकी जिह्वा कटती चली जाती है, उसकी जिह्वा से होने वाली पीड़ा, वह जो मीठापन है वो साथ लेकर के आ रहा है। दुष्यंत कुमार हिंदी के गजलकार थे, उन्हें भी लिखना पड़ा, जबकि वो धर्म से कोई संबंध नहीं रख रहे, पर फिर भी उन्होंने हम सब के लिए इशारा किया, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो और यहां से चलें उम्र भर के लिए। जिस पेड़ के नीचे मैं क्षाया के सुख पाने की लालसा रखता हूं, उस आकांक्षा से मैं पेड़ के नीचे आके खड़ा होता हूं, यहां तो दरख्त या कि पेड़ की छाया में भी दुख ही मिलता है, कहां मिल पाती है छाया, चलो और यहां से चलें उम्र भर के लिए। इस संसार से मुक्त होने में ही सुख है। इस संसार में जहां जहां हम सुख खोजते हैं वहीं से दुख मिलता है। जो चीज हमें थोड़ी देर पहले सुख देती हुई मालूम पड़ती है उसी चीज से दुख उत्पन्न हो जाता। आचार्य महाराज तो बहुत सीधा सा उदाहरण देते हैं, अपन सब के अनुभव में रोज अपन वो देखते हैं कि हाँ, वास्तव में संसार के सुखों में दुख मिश्रित ही है, उसके पीछे पीछे ही लगा हुआ है। भैया शिखर जी की वंदना करने जाते ठंड के दिन में तो कितने कपड़ा ले जाते, ऊनी खूब ओढ़ आड़ करके, और चले जाते कि भैया ठंड न लगे। अब वो सब कपड़े, साल, स्वेटर और गलूबंद जिसको कहते हैं अपन, हाथ पोस, मोजे, दुनिया भर की चीजें सब पहने हुए हैं और लदे फदे ठंड से बचने के लिए चढ़ रहे हैं। पूरी वंदना हो गई, दोपहर में जब उतरने लगे तब धूप की वजह से गर्मी बहुत लगने लगी। अब धीरे धीरे पहले साल हाथ में लई, फिर कोट उतार के हाथ में लो, फिर स्वेटर, और गर्मी लगी सो स्वेटर उतारी, सब उतार करके हाथ में टंगे हैं। अब जो सवेरे सुख दे रहे थे अब तो ऐसा लग रहा कि कहां फेंक दी मैं, हमें ढूंढने पर रह बेकार में। जिनसे मुझे सुबह सुख मिल रहा था उन्हीं में अब मुझे दुख मालूम पड़ रहा है। ऐसा है यहां संसार का सुख हमें थोड़ी देर को जिस चीज में सुख मिलता है उसी चीज से, भैया एक रसगुल्ला खाओ थोड़ो सुख मिला थे तो दो खाए से और ज्यादा मिलो चाहिए, वो 50वें नंबर को खाए से 50 गुनो मिलो चाहिए, लेकिन मिला तो है ही नहीं है। 50 के बाद तो कहते कि टू एनफ, बहुत हुआ, अब नहीं खा सका था, अब तो बाहर आ जाए सबरे 49 और अगर 50 मौका लें। ऐसा संसार के भौतिक सुखों का हिसाब है, लेकिन जिसकी समझ में आ जाए, कोई ऐसा नहीं है कि इसी जीवन में समझ में आए, कई जिंदगी लग जाती तब समझ में नहीं आ पाता, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को डिग्री धारियों को नहीं समझ में आ पाता। भाई आत्मज्ञान होना आसान नहीं है, दृष्टि की निर्मलता होना आसान नहीं है, बाहर निकल करके अपन को फिर उन्हीं भौतिक सुखों में सुख महसूस होने लगेगा। भौतिक सुखों को इकट्ठा करना अलग बात है, वो तो मेरे कर्तव्य हैं, मैं अपने परिवार को चलाने के लिए भौतिक सुख सुविधा की सामग्री रखूंगा, उसके बिना काम कैसे चलेगा, लेकिन भौतिक सुख सुविधा की सामग्री में सुख मिलता है, ये मेरा सोच मुझे सुधारना पड़ेगा। इससे अलग कोई आत्म सुख है जिसकी प्राप्ति के लिए मुझे दिन भर में थोड़ा सा समय निकाल करके इस भौतिक सुखों के लिए जितना प्रयत्न करता हूं पाने का, उसका 1% तो मुझे अपने आत्मा के सुख पाने के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख तो आत्मा का ही है। ऐसा विचार जिसकी दृष्टि निर्मल होती है, जो सम्यक दृष्टि होता है, उसके भीतर होती है, बाकी अपन तपन सबके भीतर होवे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कर्म पर्व से शांति दुख ही रंतितोदय पाप बीजे, जब जब मैं सुख के साधन जुटाने की कोशिश करता हूं मुझे पांचों पाप करना पड़ता, थोड़े से 4 पैसा कमावे के पीछे हिंसा करना पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगी, सरकार को टैक्स छुड़ाने पड़, नहीं तो कैसे चले, ऐसा कह देते कई लोग। और अगर ज्यादा पैसा हो गया तो फिर बहुत सारे व्यसन इत्यादि भी मेरे जीवन में 5 इंद्री जन्य जो सुख हैं उसके लिए मैं व्यसनों में पड़ जाता हूं और खूब जोड़ जोड़ करके धर लेता हूं, बहुत आसक्ति भी रखता हूं, परिग्रह भी आ जाता। इस तरह पांचों पाप के कारण यही भौतिक सुख जो कि मैं सुबह से शाम तक उनके लिए उपाय करता हूं मुझे पाप की तरफ ले जाते हैं, पाप के बीज हैं। सुखे अनास्था, इनमें सुख नहीं है, इनके सुख में आस्था नहीं रखता जो, उसी की दृष्टि निर्मल है, वही सम्यक दृष्टि है। भैया सब जानते हैं टॉलस्टॉय ने कहानी लिखी, हाउ मच ए लैंड मैन रिक्वायर, एक मनुष्य को कितनी जमीन चाहिए। वो व्यक्ति एक ने कहा था कि तुम सूर्य के उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक जितने दौड़ो उतनी जमीन तुम्हें दे दें, सुबहिया दौड़े सवेरे से कि जितनी ज्यादा दौड़ लें उतनी जमीन अपन को मिल जाए। कहानी में तो ऐसा ही है, तो दौड़ता गया, फिर उसने सोचा कि अब दोपहर हो गई, अब जब वापस लौट के आए हैं जब तो वह पूरी की पूरी कवर हुई है। उसने 2-2.5 बजे के बाद वापस लौटना शुरू किया, लघु शंका जावे की फुर्सत नहीं, भोजनों की पानी पीवे लो की फुर्सत नहीं, कैसे उतनी देर लग जाए तो उतनी जमीन ने मिल पे। सो थक करके हां फूंक करके वापस लौटा के अब तो मैं जहां से चला था वहीं पहुंच जाऊंगा, लेकिन वहां तक पहुंचने से एक कदम पहले उसकी सांस पूरी हो गई, प्राणांत हो गया, और वहीं पर उस लाइन जहां की वह पहुंचना था वहां पर उसकी कब्र बनाई गई, जिस पर लिखा गया कि हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर, 6 फुट जमीन चाहिए मरवे खो और कछु नहीं जाने ज्यादा, इतना ही है। मरने के बाद 6 फुट दफनाने के लिए जमीन लगी, वैसे तो कोशिश करते रहे कि बहुत सारी जमीन मिल जाए, एक एक इंच के लिए कहो कोर्ट में 6-6 महीने 6-6 साल तक लड़ते रहेंगे, अनंतानवंदी कषाय 6 महीना के बाद शांत हो जाते, जब सम्यक दर्शन की भूमिका बनती। अपन 2-2 साल 6-6 साल तक अपने केस अटकाए हुए हैं, कितनी कषाय भाव दूसरे के प्रति रहती है, जरा से 1 इंच जमीन दूसरे ने ले ली है ये सिद्ध करने के लिए हमारी है, हमारा अधिकार है इस ऑनरशिप के पीछे, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि ये मेरा राइट है और इसमें सुख बहुत मिलेगा। उस थोड़े से सुख के लिए और मैं अपने प्राणों को पतित करता रहता हूं, अपनी जान भी चली जाए तो दे देता हूं। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि दमड़ी जाए वो चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए, प्राण निकल जाए लेकिन एक धेला एक पैसा ने खर्च करने पड़े। भाई ऐसा सब लोग जानते हैं, फिर भी उसके बाद सचेत होकर के अपने सच्चे मार्ग पर नहीं आ पाते। इसके ठीक अपोजिट अनंतमती की कहानी महाराज ने सुनाई थी, प्रथमान योग में आती कि उसे हरण करके विद्याधर ले गया था और एक जंगल में छोड़ दिया था, 3000 वर्ष तक वहां रही और अंत में उस वो वाली नहीं दूसरा है अनंतमती की दूसरी है, उन्होंने विद्याधर ने उसका हरण करके बेच बाच दिया जो भी हुआ और अंत में उस लग गई वो ठिकाने माताजी के पास, माताजी के अनंगसरा माताजी के पास पहुंच करके और एक शहर में माताजी का जहां चतुर्मास हो रहा था वहां पर एक श्रावक के यहां चौका लगा था। सो वो चौक पूरने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा चौक बनाने में माहिर थी, तो कह ले तुम अपनी ब्रह्मचारिणी जी हमारे ते चौका लगो है माताजी सुको, सो भेद दो चौक बना दे हैं। सो वो आकर के चौक बना के गई। कर्म संयोग की बात है कि उसी दिन उसके पिता का वहां आना हुआ। चौक को देख करके पिता के आंसू आ गए, लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो बोले हमारी बेटी जो जिसका हरण हो गया था अब पता नहीं कहां है, वह भी ऐसा ही चौक पूरती थी, किसने बनाया ये तो देखूं जरा उससे मिल लूं। तो उस बोले वो तो माताजी के साथ में है, हम वहां से लाए थे ब्रह्मचारिणी हैं, तो वहां जाकर के देखा तो वो तो बेटी ही निकली, लेकिन बेटी ने घर जाने से इनकार कर दिया कि मैंने देख लिया संसार का स्वरूप, भौतिक सुख मैंने देख लिए, अब तो माताजी के साथ रहकर मैं अपना कल्याण करूं। एक वो स्थिति है और एक व्यक्ति अपनी भौतिक सुखों के लिए जान दे देता है फिर भी सचेत नहीं होता, उसने तो संसार के धक्के खा करके सचेत हो गई और अंत में अब और धक्के ना लगें इस संसार के, मैं अपना संसार में रह करके कल्याण कर सकूं ऐसा निर्णय लिया। भैया इच्छाएं तो अपार हैं, लिखा है उसमें कि इच्छाएं तो दुष्पूर हैं, जितनी पूरी करो और नई नई पैदा होती जाती हैं, इसलिए उनको दुष्पूर कहना पड़ा। अपने भीतर भी सुबह से शाम तक कितनी आकांक्षाएं उत्पन्न होती, भली बुरी सब प्रकार की आकांक्षाएं उत्पन्न होती, आध्यात्मिक इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, सांसारिक इच्छाएं उत्पन्न होती। हमें मंदिर जाने जो तो बहुत थोड़े लोगों को, हमें मंदिर नहीं जाने जाने पड़े, ऐसा उपाय करो कछु लियो, ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी मंदिर न जाने पड़े, कछु बहानो बना दो, आज पेट में दर्द है हमारो, आज हमारे पांव से चलो नहीं जा रहा हो, हमसे निगो नहीं जा रहा, ऐसे अपन बहाने ढूंढेंगे। ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी जो कि आध्यात्मिक इच्छा हो, लेकिन इच्छा उत्पन्न होगी तो सांसारिक, और सांसारिक में भी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा तो बहुत कम रहेगी। आरामदेह इच्छाएं मेरी पूरी हों, और आरामदेह ही नहीं विलासता पूर्ण लग्जूरियस नेसेसिटीज अपनी बहुत ज्यादा मात्रा में है, उनको ही पूरे करने में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है उसके साथ साथ दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि हमने एक दिन कहा था आपसे कि बाजार में निकले सोते अपन को समझ में आई कि जो कपड़ा 900 लग रहा हो नई डिजाइन आई है जाता जहां हमें लेना चाहिए, हमारे पास तो है ही नहीं है। अब लियो साहब दुकान पर खूब पैसा कमाने के लिए, क्योंकि सुने आए हैं कि वो मेंगो कपड़ा है, अब मेंगो कपड़ा है तो उससे पैसा चाहने, सो अब जितनी बेईमानी हो सके कमाने में उतने बेईमानी से कमा लो, कैसे वो खरीदने उसमें सुख मालूम पड़ रहा, उसके नहीं होने पर दुख मालूम पड़ रहा,
सो प्रयास निरंतर चलता रहता है कि उतने पैसे होने पर फिर वो कपड़ा खरीद करके लाते हैं और उसकी शर्ट बन जाती है। दो चार दिन पहनने के बाद रस्ते में बड़ी ठसक के साथ निकलते के देखा हमारे पास लेटेस्ट डिजाइन का कपड़ा है, आपके पास तो है ही नहीं, चार जनों को दिखाऊ थे। और फिर उसके बाद चार दिन के बाद और दूसरा फैशन चेंज हो गया, दूसरे किस्म का कपड़ा आ गया, तो अब सारा सुख उसमें जाके प्रोजेक्टेड हो गया। अब इसमें सुख था पहले, लेकिन वो अब मुझे मिल गया, अब मेरा सुख ट्रांसफर होकर के दूसरी चीज में चला गया और उसके लिए फिर प्रयत्न शुरू हो जाता। जैसे बने तैसे हिंसा करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, वैसे करूंगा मैं अपने सुख के लिए। आजकल तो मुझे इस बीच में ये कहना पड़ा, बुरा नहीं मानना आप, हमारे छोटी बेटियों से लेकर के बड़ी बेटियां भी बैठी हैं, सब बैठी, सबके नाखून जैसे ओरिजिनल हैं सो वैसे नहीं रह गए, अब तो बड़े बड़े जैसे कि शेर वगैरह के होते वैसे, हाँ सीधा सीधा, सो वैसे पहने बड़े कर हैं फिर उनको रंग हैं, और रंग करके जैसे रंग की धोती पहने हुई है, कपड़ा पहने हुए ऊ रंग को लगे हैं वो में, और फिर उसको रिमूवर से रिमूव करेंगे, दूसरी साड़ी पहनेंगे तो दूसरा कलर। ओरिजिनल कलर उसका क्या है इसकी चिंता नहीं, ओरिजिनल ब्यूटी क्या है इसकी चिंता नहीं, डुप्लीकेट मुझे इसमें सुख मालूम पड़ रहा है। छोड़ने के लिए मैं कहूंगा तो आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब आपको मालूम पड़ने लगे कि सुख इसमें नहीं है, मैं व्यर्थ ही ये प्रक्रिया कर रहा हूं, अपना टाइम मनी और एनर्जी तीनों वेस्ट कर रहा हूं, मैंने इसमें सुख मान लिया है कि नेल पेंट्स अच्छे प्रकार का लगाऊंगा तो बहुत बड़ा कहलाऊंगा और बड़ा स्टेटस, और चार लोगों के बीच सहेलियों के बीच हम बहुत बड़े कहलाएंगे, नहीं तो ऑड लगेंगे बड़ा। इस तरह की चाहे नेल पेंट्स और लिपस्टिक बनने में कितने जीवों की हिंसा होती हो, मैं अपने सुख के लिए सबका जीवन दांव पे लगा दूंगा, लेकिन मुझे सुख मिलना चाहिए। ये जो सुख का कांसेप्ट अपने भीतर पड़ा हुआ है, यही अपनी दृष्टि की मलिनता का कारण है। जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होगी तब तक किसी के कहने से छुड़वाने से छूटने वाला नहीं, अपने भीतर लगने लगे कि हाँ ठीक तो है, मैं व्यर्थ ही ऐसा उपद्रव कर रहा हूं। 20 चीजें डली रहती काय में, लिपस्टिक में जो उन पोती जाते थे और कछु नहीं, मेकअप करने के लिए ब्यूटी पार्लर में, जितने ब्यूटी पार्लर अटेंड करने वाले हो, ब्यूटी पार्लर चलाने वाले हैं, वो कहां जाने वाले हैं, ये कभी भाव फल त्रयदर्शी में पढ़ें अपने हाथ से, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उनको किस आयु का बंध होगा, किस कर्म का बंध होगा, ये आप अपने आप पढ़ लें। लेकिन भीतर कॉन्सेप्ट वही है कि इसमें सुख है। जब तक ये चीज नहीं निकलेगी कि इसमें सुख है, जब तक ये चीज पड़ी हुई है कि इसमें सुख है, तब तक कोई भगवान भी उतर आए तो नहीं रोक सकता आपको, हम कर रोकेंगे आपको। आपके भीतर से ये अंधकार हटना चाहिए कि इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख होता तो फिर सबके लिए जिनको इसका अभाव है उनको तो दुखी होना चाहिए था, लेकिन वे भी भैया हम तो नहीं लगाओ नेल पेंट, मगर अपन तो सुखी है। अगर इसमें सुख होता नेल पेंट में तो जो जो नहीं लगाए हैं नेल पेंट उनको इसकी वजह से दुख होना चाहिए था। और नेल पेंट में अगर सुख है तो खूब लगा लो, बहुत सारा तो सुख मिल जाएगा, लेकिन ऐसा एकदम ध्यान में नहीं आता है। मैं 20 चीजों के बारे में बता रहा था कि लिपस्टिक में 20 चीजें डली रहती, जिसमें से 12 मांसाहारी हैं, जिसमें से 7-8 चीजें हैं जो कि मिनरल और हर्बल और मिनरल हैं, बाकी 12 चीजें नॉन वेज हैं जिनको स्पर्श भी आप नहीं करेंगे। लेनोलिन लिखा रहता उसमें कंटेंट्स में, लेनोलिन ऐसा लगता कोई बढ़िया सी चीज है, इंग्लिश का नाम लिखा लेनोलिन, लेकिन काय से निकलती वो प्रोटीन है, भेड़ के जब बाल उखाड़ते हैं उसमें से जो स्किन निकलती है उसमें से एक्सट्रैक्ट की जाती लेनोलिन। ऐसी 12 चीजें पड़ी हुई हैं जिसमें 20 बैग्स मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ करके उसका जो छत्ता बचा उसमें से मोम निकाली जाती है, वो मोम उसमें डली रहती, क्योंकि पैराफिन मोम डाल नहीं सकते, पैराफिन मोम अगर पेट के भीतर चली गई तो हानिकारक है, इस वजह से 20 बैग्स डालेंगे मधुमक्खी का जो मोम है वो उसमें मिक्सअप करेंगे और वो अपन अपने होंठों पर लगाते हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 3 साल तक जो लिपस्टिक और नेल पेंट्स का बार बार यूज करके और मिटा करके दूसरा लगाते हैं उनको कैंसर तक की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सचेत ही नहीं है अपन, काहे के पीछे, अपने भीतर दृष्टि की निर्मलता नहीं होने की वजह से। जिसकी दृष्टि निर्मल है उसको 1 मिनट नहीं लगेगा, वो कहेगा ठीक क्या रखा है इसमें, इसमें थोड़ी सुख है, सुख तो मेरे भीतर है, मेरी आत्मा के स्वरूप में सुख है, इन चीजों में थोड़ा सुख है। लेकिन जब समझ में आवे तब है, अपन को इतनी छोटी सी चीज भी समझ में नहीं आती है कि मैं हिंसा करके और सुख प्राप्त कर रहा हूं, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कितने जीवों को कष्ट में डाल रहा हूं। ऐसे ही रेशम की साड़ी है, कम से कम मंदिर में तो नेपेरो, रेशम की साड़ी 400 ग्राम की होती जिसमें 15,000 ककून, 4 इंद्री जीव उबाल करके बनती है वो, उसमें गर्म पानी में उनके मारने के बाद उसमें से रेशम निकलता, तब जाकर के रेशम की साड़ी 400 ग्राम की बनती। 80-20 वाली तो लगभग सभी साड़ियां रहती, हम कौन रेशम की पैरत नहीं पैरत। लेकिन आपने पूछी उससे कि 80-20% रेशम है, 80% और दूसरा कॉटन वगैरह मिक्स करके और फिर उन्होंने बना दी साड़ी। अब वो 20% में भी तो रेशम में कीड़े मरे होंगे, कोसा पहनते हैं, ऑफ्टर सेव लोशन लगाते हैं। आप ये नहीं समझिए कि हम तो कछु नहीं करते, ने साड़ी पहनता है, ने लिपस्टिक लगाता है, ने कछु। लेकिन दाढ़ी बनाने के बाद जो साबुन का यूज करते हैं आफ्टर सेव लोशन का, वो कैसे बनता कभी पता करिएगा। छोटे छोटे से भौतिक सुखों के लिए दृष्टि निर्मल ना होने की वजह से अपन इस तरह से अपनी अज्ञानता की वजह से इन चीजों को जाने समझे बिना ही इनमें सुख मान करके अपने लिए सुबह से शाम तक इन चीजों का इंतजाम करते रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ दो, आप तो और लगाओ, 2 रखी हुए ट्यूब से 4 ले आओ, हमें क्या करने। लेकिन अपनी दृष्टि निर्मल नहीं होने की वजह से ये होता, बस इतना भर ध्यान रखो, मुझे दृष्टि निर्मल बनानी है ताकि इन सब चीजों से मैं मुक्त हो सकूं। दृष्टि निर्मल नहीं है, अज्ञानता है, इस वजह से ये सब चीजें मेरे जीवन में हो रही, इतना विचार तो अपने भीतर आना चाहिए। अपने आप को ज्ञानी मानने वाले लोग भी बहुत बड़े बड़े, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं और ये सब काम करेंगे तो क्या मतलब उनके एजुकेशन का। महाराज बार बार कह रहे हैं कि ऐसी एजुकेशन का क्या मतलब, ऐसी शिक्षा का क्या मतलब जो हमें अनैतिकता सिखाए, जो हमें हिंसा सिखाए। अर्थ उसका सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी अज्ञानता को जो भीतर बैठी हुई है उसको दूर करके वास्तविक ज्ञान हासिल करके और अपने जीवन का कल्याण करें। एक बार एक घटना है, इन इच्छाओं को लेकर के जिनके पीछे सुबह से शाम तक अपन पूरे करने में लगे रहते लेकिन इच्छाएं तो पूरी नहीं होती। एक व्यक्ति ने, गरीब आदमी था, सुबह से काम पे जाता था और थका हारा आता और सो जाता अपनी झोपड़ी में। सो एक दिन रात में सोया, सो उसने सवेरे सवेरे एक सपना देखा। क्या सपना देखा कि राजधानी में पुल के पास में जो खंबा है उसके नीचे बहुत सारा धन गड़ा है और अपन ले ली में तो रही सा आदमी हो जाए। बस उसने उठ करके काम के लिए जाने लगा, ये सोच करके कि अरे सपना कौन सही होता, ठीक है भैया। दूसरे दिन फिर थका हारा सोया तो दूसरे दिन फिर वही ज्यों का तो सपना, वही राजधानी, वही पुल, वही खंबा बिजली का और उसके नीचे धन दबा हुआ है। उसने कहा हो ना हो कुछ बात गड़बड़ है, लगातार 2 दिन तक सपना आया। अब थोड़ा थोड़ा उसको भी डाउट हुआ कि अगर सच्ची होगा तो फिर मजा आ जाएगी। इन भौतिक सुखों में ही सुख मानने वाले की स्थिति यही है और कुछ नहीं। और तीसरे दिन जब थका हारा सोया और उसको वही स्वप्न फिर से आया तो उसको कोई नहीं रोक पाया, उसने स्वप्न पर विश्वास कर लिया। अपन भी तो सपने पर विश्वास करके और बैठे हुए हैं। उसने तीसरे दिन के फिर वही सपना रिपीट हुआ तो विश्वास करके और अपनी यात्रा शुरू कर दी। पैसा है नहीं है जावे लाख, ने मोटर के लाख, ने ट्रेन के लाख, सो पैदल चले भैया, राजधानी चलेंगे। वहां पहुंच करके उसने राजधानी में जैसा स्वप्न में देखा था वैसा ही सब दिखाई पड़ रहा, पुल, हाँ पुल भी बिल्कुल वैसा ही दिखा था स्वप्न में, और वो बिजली को खम्मा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही खम्मा था और वही के नीचे दबो है, जा और देखी थी उन्हें। लेकिन जैसे ही उस खंबे के पास पहुंचा, उस पुल के ऊपर एक सिपाही यहां से वहां घूम रहा था। अरे जो तो नहीं देखो तो सपना ने हमने, है कि नहीं? सपने में सिर्फ यही देखा था कि वहां धन दबा हुआ है, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि उसकी रक्षा करने के लिए यहां से वहां घूम रहा है, जबकि वो व्यक्ति उस पुल से बहुत सारे केसेस हो चुके थे सुसाइड के। तो ऐसे केसेस ना हो, लोग यहां से आत्महत्या ना करें, इसलिए वो उनकी सुरक्षा के लिए यहां से वहां घूमता था। उसकी ड्यूटी चेंज, इसने सोचा कि दिन दिन भर रहे ड्यूटी तो चेंज हुई है, सो भाग है तैसे स्वपन निकालने पैसा। लेकिन शाम को उसने देखा कि दूसरा सिपाही आ गया, वो चला गया, ड्यूटी चेंज हो गई। रात भर वो रहा, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, कभी तो हटेगा, तीसरा दिन भी आ गया, वो फिर सिपाही वहीं के वहीं, कैसे निकालें धन पैसा, खजानों जितो है, नहीं निकल पा रहा है। तो वहीं पर घूमता है यहां से वहां, उसकी दृष्टि सिपाही की उसके ऊपर पड़ जाती, सिपाही उसको पकड़ लेता, कहती क्यों भाई तुम्हारा मन क्या है इस पुल से नीचे गिर के अपने प्राण देने का है, जो तुम यहां से वहां तीन दिन से देख रहा हूं मैं, मेरी ड्यूटी भले ही चेंज होता आती है, लेकिन तुम जब मैं अपनी ड्यूटी पर आता हूं, आज तीसरा दिन है, तुम यहां से वहां घूमते ही नजर आते हो, बात क्या है? कहले अब आपसे क्या छुपाएं, हमने एक सपना देखा था। अरे तुमने सब तुमने झोपड़ी है जिसमें एक गरीब आदमी रहता है, वो जिस पलंग पर जिस खाट पर सोता है उसके नीचे धन पैसा दबो, हम तीन दिन से देख रहे, जो जहां है वहां उसे सुख नहीं मालूम पड़ेगा, जो नहीं है अपने पास भौतिक सुख में सुख मालूम पड़ेगा, नाउ इन हियर नहीं, देयर इन फ्यूचर, अभी और यहां सुख मिलेगा ऐसा नहीं है, कभी और कहीं और मैं अपने सुख को ट्रांसफर कर देता हूं और इसी तरह उलझ करके इस खेल में और मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता हूं। मैं स्वप्न देखता हूं कि वहां मिलेगा, दूसरा स्वप्न देख रहा है कि मेरे ही पास है। वास्तव में इस घटना से इतनी ही शिक्षा मिलती है कि संपत्ति तो मेरे ही पास है, मैं व्यर्थ में ही यहां वहां उस सुख की तलाश कर रहा हूं। मैं अगर सब तरफ से आंख बंद करके अपने भीतर श्रद्धा की ज्ञान की आंख खोल लूं तो वह सुख और संपत्ति मेरे ही भीतर है, जिसकी तलाश में मैं यहां से वहां मारा मारा फिरता हूं, सुबह से शाम तक पाप कार्य करता रहता हूं। अपने इस तरह का अगर ज्ञान हो जाए, ऐसी अगर दृष्टि की निर्मलता आ जाए, तो निकांक्षित अंग से युक्त सम्यक दर्शन इसी को कहेंगे। ऐसी दृष्टि जिसमें कि आकांक्षा है तो थोड़ी बहुत संसार की आकांक्षा, लेकिन ऐसी आकांक्षा नहीं है कि धर्म छूट जाए भले ही, लेकिन हमारे पास तो भौतिक सुख खूब सारी हो। इतना ही अगर घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति अपन कर लेवे, बिल्कुल इच्छा से रहित हो जाए ऐसा तो है नहीं, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं करेंगे कि मुझे धर्म को दांव पर लगाना पड़े। मैं मंदिर आ रहा हूं, उतने में अगर कोई कहे कि मंदिर न जाओ हम तुम्हें लाख रुपया दें, तो उससे हम कह सके कि धर दो अपने लाख, अबे तो हम मंदिर ही जाएंगे, लेकिन अपने मन में लालच आ जाती है कि मंदिर तो फिर संजा को चले जाए, अबे लाख रुपया मिल रहे सुबी पहले नहीं के संग चलो। ये जो इच्छा है अपनी, इस इच्छा को जीतने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि निकांक्षित होकर के और धर्म का साधन करना चाहिए, धर्म के द्वारा संसार के सुखों की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार के सुखों में वास्तविक सुख नहीं है, वास्तविक सुख तो अपने भीतर अपने स्वभाव की प्राप्ति में है। अपन भी ऐसा ज्ञान ऐसी दृष्टि प्राप्त करें जिससे कि इन भौतिक सुखों में सुख है ऐसा भ्रम अपना टूट जाए और वास्तविक सुख अपन को प्राप्त हो जाए। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ,
हो अर्धनिशा का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हूँ,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर तर तल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़ियां,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते वो शम सम की अविनश्वर मणियां,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम,
उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ कै
धवल मंगल नान रवा कुल
दिन ग्रहे मुनि राज ओम रीम श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भगवत सागर जी महाराज चरणों में अर्घ्य निर्पमित।
मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर पास वेखो भानु शिव कानी है,
छह द्रव्य जान वेखो बंदे विधि भान वेखो स्वपर पहचान वेखो परम प्रमाणी है,
अनुभवताय वेखो जीवों के जताय वेखो काहू न सताय वेखो भव्य और आनी है,
जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही वाणी है,
जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुगोंदो।
रात में खाए जाने वाला भोजन डिनर के मायने हैं, जितना प्रकाश 4 बजे दिन में रहता है उतने प्रकाश में खा लिया जाने वाला, विदेश में 8 बजते हैं उतने बजे, आपके यहाँ के 8 बजे हैं, उनके 8 बजे इतना उजाला रहता जितना अपने यहाँ 4 बजे रहता है, लेकिन नकल भी करी मनो बिना अकल के करी होशियार बनने के चक्कर में। और लंच के मायने क्या होता, आफ्टरनून किया जाने वाला मील 1 बजे भोजन करते हैं उसको लंच कह रहे हैं अपन, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे टाइमिंग से 4 घंटे घटा दो, कितने बजे, 1 बजे में 4 घंटे कम करने पर 9-10 बजे ना, उतने बजे भोजन किए जाने वाला लंच कहलाता, उनके लिए 1-1.5 बजे होगा लंच, हमारे यहां तो 10 ही बजे हो जाएगा वो लंच, और ब्रेक द फास्ट द ब्रेकफास्ट, और वो जो 4 बजे भोजन किया था आप तब से भोजन छोड़ा है एक तरह से उपवास हो गया है सुबेरे, उसी का नाम ब्रेकफास्ट है जो सुबह सुबह और हम दर्शन करके जाते हैं और फिर थोड़ा सा कर लेते हैं भोजन और कुछ नहीं, इतने देर में भोजन किया है इसलिए ब्रेकफास्ट कहलाता, नाश्ता वास्ता नहीं कि सुबेरे से आराम से और भोजन कर, भोजन ही उस तरह से 8-9 बजे जो अच्छी हैवी मिठाई विठाई और सब खा ली, फिर अब 2 बजे तो लगेगी भूख, और जब 2 बजे खाया है तो रात 8 बजे खाओगे। सारा जो है एक सिस्टम अपन ने अपने हाथ से और डिस्टर्ब किया, जबकि सीधी सी प्रक्रिया थी। सूर्य तो सूर्य उदय से ही दिन और रात का विभाजन होता है, आपके बजने अजने से दिन और रात का विभाजन नहीं होता कि 6 बजे और 7 बजे। सूर्य अस्त हो गया यानी रात शुरू हो गई, सूर्य उदय हो गया यानी दिन, और सूर्य अस्त होने के 2 घड़ी पहले अपने भोजन से निवृत्त हो गए, और सूर्य उदय होने के 2 घड़ी बाद भोजन की प्रक्रिया शुरू होगी उसके पहले। ये है दया और करुणा, ये है अपने जीवन में अपनी मर्यादाएं अपना अनुशासन स्वयं बनाना। जीवन का कोई सिद्धांत है नहीं, क्योंकि ऐसे ही लापरवाही में व्यतीत कर रहे हैं अपन, कभी इस तरह भी सोचना। कोई डिसिप्लिन है, कोई सिद्धांत है, कुछ बना के चल रहे हैं अपने जीवन का, या कि बस एक ढेर चाल। कई बार ऐसे लगता है कि बस अपने जीवन में कोई मर्यादा नहीं, कोई अनुशासन नहीं, अपने जीवन का कोई जीने का कोई सिद्धांत ही नहीं। दुनिया भर को तो सिद्धांत बताते हैं, देख लो आप, समझाने के लिए अपने बच्चों को समझाएंगे कि यह करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। वो स्वयं किसी दिन पूछ ले कि आपने कौन से सिद्धांत बना रखे अपने जीवन के, ये सिद्धांत बना रखा कि 10 बजे रात को खाएंगे, ये सिद्धांत है आपका। ये विचार करें आप, थोड़ा सा आराम से विचार करें। महाभारत में, जैन धर्म ग्रंथ में तो लिखा ही हुआ है, महाभारत में लिखा है चत्वारी नरकानी द्वाराणी, नरक के 4 द्वार हैं। प्रथमम रात्रि भोजनम, सबसे पहले नंबर। सुन रहे हैं आप, ऐसी चीजें जरा गौर से सुना करें, याद रहने की चाहिए, काम आएंगी कभी। अभी तो बहुत मुश्किल है, अभी तो हो सकता है कि आज ही और कलाकंद रात में ही खाना पड़े, बना होगा घर में, है कि नहीं, पटाखे फोड़ेंगे उसके बाद, फिर बाद में कलाकंद खाएंगे। परंपरा है भाई, बहुत दिन से चली आ रही, आपके यहां नहीं चलती हो शायद, और कोई चीज चलती हो, चलती तो हो। मिलने जाते हैं लोग रात में, मिलने जाते, क्षमावनी के दिन भी रात में मिलने जाएंगे और बढ़िया सबके यहां पर नाश्ता करेंगे रात में। शाम से शुरू होता मिलने जाना, यहां तो यही चलता, हमने तो देखा उधर जयपुर में तो खूब 6 बजे शाम से मिलने जा रहे हैं सबसे क्षमावनी के दिन, और सुनावनी दिन मिलने का आएंगे, नाश्ता करने जा रहे हैं सबके, वो उनके यहां नाश्ता करेंगे, वो उनके यहां नाश्ता करेंगे, कब तक चलेगा, 12 बजे तक चलेगा, उस दिन तो फ्री। ये हमारे जीवन का सिद्धांत है भाई। अपने ऊपर हंसने का मन तो नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर रोने का मन होना चाहिए, अपनी इन आदतों पर दुखी होने का मन तो बनाना चाहिए। दूसरे पर तो हंस लेते हैं अपन, पर अपने ऊपर हंसना मतलब अपने ऊपर रोना ही है एक तरह। हमें विचार करना चाहिए, हमारी अपनी परंपरा ये नहीं रही, हम वे लोग नहीं हैं जो अपने जीवन को लापरवाही में व्यतीत करें। हमें अपने जीवन के सिद्धांत बना रहना चाहिए, हमें अपनी परंपरा का निर्वाह करने के लिए अपने जीवन को अनुशासित करना चाहिए, और इतना ही नहीं, अपने आत्म कल्याण की भावना, अपने आत्म विकास की भावना से भी इन सब चीजों को और व्यवस्थित कर लेना चाहिए। रात्रि में भोजन की प्रक्रिया जो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। छठ की प्रतिमा लेना तो बहुत बहुत विरले लोगों का काम है आज के समय में, कि स्वयं भी नहीं खाऊंगा, न किसी को खिलाऊंगा, कोई आ जाएगा घर में तो हाथ जोड़ लूंगा कि देर से आए आप, अब तो कल मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा, पानी पीना हो तो पानी पिला सकता हूं, वरना वो भी चारों प्रकार की आहार में तो पानी भी आता है, वो भी नहीं कर पाऊंगा मैं तो। बच्चे हैं, बच्चे संभालें, वो अगर पिला दें तो पिला दें, मैं तो इन सब चीज़ों में शामिल नहीं हूं। घर गृहस्थी में रह करके भी और इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। रात्रि में हम लोग बहुत तेजी से अब तो सामूहिक रूप से और बैठ करके भोजन करने लगे। मैंने इस बार ये निर्णय कर लिया है कि पिछी परिवर्तन में मुझे पुरानी पिछी जिसे देनी है उसके व्रत तो ठीक ही हैं, लेकिन जिनसे नई पीछी लूंगा उनके सारे व्रतों के बावजूद भी एक व्रत पर बहुत जोर दूंगा कि जो समूह में रात्रि में भोजन करेगा मैं अपनी पीछी में उसके हाथ नहीं लगाने दूंगा। और इतना ही नहीं, जो होटल में बैठ करके भोजन करेगा वो भी हमारे पीछी में हाथ लगाने का अधिकारी नहीं। हम लोग जिस तरह से अपने धर्म की अभिनय कर रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है। हम लोग 10-10 दिन के उपवास करते हैं पर्युषण में, और उसके बाद भी होटल में बैठे दिखाई पड़ते हैं तो अपने धर्म की हंसी उड़ाते हैं कि ये वही है जो 10 दिन तक जिनने उपवास किया था और आज होटल में बैठे, ये वही है जिन्होंने कि महाराज के पीछी परिवर्तन में पीछी में हाथ लगाया था, या माता जी आई थी तो उनके पीछी परिवर्तन में हाथ लगाया था, और आज यही देखो और समूह में जब किसी के यहां विवाह हुआ है तो उसमें रात में जाकर के सबके बीच खा रहे। इतनी मर्यादा तो अब अपने को अपनी निर्धारित करनी ही पड़ेगी, अपने आत्म कल्याण के लिए और आने वाली पीढ़ी के कल्याण के, दोनों के लिए। इतना निर्णय तो सामाजिक रूप से भी करना चाहिए, मैं तो ये भी सलाह दूंगा कि सामाजिक रूप से भी ये नियम होना चाहिए कि समाज में कोई भी व्यक्ति अगर रात्रि में किसी को भोजन के लिए बुलाया जाएगा तो सामूहिक रूप से उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा कि हम कोई नहीं आएंगे, आपने रात में हमें भोजन के लिए बुला करके हमारी इंसल्ट की है, इसलिए हम आपके समूह में अब भोजन के लिए आपके यहाँ नहीं आएंगे, हमारी रिश्तेदारी खत्म होती हो तो हो जाए। ये एक बार सामाजिक रूप से और सामूहिक रूप से निर्णय लेना पड़े। सामूहिक रूप से दिन में खाएं, खाते थे लोग, बैठते थे दिन में और खाने के लिए एक दूसरे से हर्षित पूर्वक और परोस करके खाते थे, लेकिन ये तो कोई प्रक्रिया नहीं है कि हम रात्रि में, और सिर्फ इसलिए कि भाई क्योंकि चल रहा है सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम करें। ये प्रक्रिया तो धीरे धीरे, मैं तो ये मानूंगा कि अगर मैंने वाकई में यहाँ पर 4 महीने अपने व्यतीत किए हैं और आपके दिल में मेरे प्रति थोड़ी भी लगन है, लगाव है, श्रद्धा है थोड़ी सी भी, तो मैं तो आपसे यही आशा रखूंगा। वैसे तो आशाएं रखना दुख का कारण बनती हैं, पर फिर भी मैं ये आशा रखूंगा कि कम से कम यहाँ के लोग छठी प्रतिमा भले ही न ले पाए लेकिन इतना तो जरूर कर लेंगे कि हम समूह में अब किसी के यहां पर रात में जाएंगे भले ही पर खाएंगे, आपके ब्याह में हम आएंगे पर रात में हम आपके यहां कुछ नहीं खाएंगे। ये हम एक बार सामाजिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी अगर ये निर्णय ले लें तब तो मैं समझूंगा कि आपके मन में जरूर थोड़ी सी अपने साधु जनों के प्रति श्रद्धा है या लगन है, वरना जैसा चल रहा है वैसा तो चलते ही रहेगा, मैं तो कोई विशेष वो नहीं है। आचार्य श्री ने एक बार बताते हैं 2-3 साल पहले, और इसी बात को पूरे मंच से जबकि 5-10 हजार लोग इकट्ठे हुए थे नैमावर में, तब कहा था कि आज आपसे मांग रहा हूँ, आज तक नहीं मांगा कुछ भी, तो आश्चर्य करने लगे कि आप हम लोगों से क्या मांग रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं सिर्फ इतना कि आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए आप यहां से लौटते वक्त रात में भोजन नहीं करने का क्लियर करते, लेकिन हम इन आए हुए प्रतिनिधियों से यह भी चाहेंगे कि ये भी इस मंच से ये घोषणा करके जाएं कि ये जैन हैं इसलिए ये भी सामूहिक रूप से रात्रि में भोजन नहीं करने का नियम लेके जाएंगे। सबके सिर नीचे हो गए, अपने भी हो गए, कोई सब ये कह के आ गए थे वो 5 लोग कि हम अपनी कह सकते हैं हम नहीं करेंगे। आज ये स्थिति हमारी है, कोई तो हमारी अहिंसा को बहुत ऊंचा समझता है और हमारी उस अहिंसा की ऊंचाई को पहचान करके और हम जैसा कहते हैं वो तैयार हो जाता है, लेकिन हम अहिंसक कहलाने वाले लोग और रात्रि भोजन में होने वाली हिंसा को पहचानने वाले लोग और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब तो स्टेट ऑफ वैल्यू बन गई है। भाई हम तो आज के दिन यही अपेक्षा रखेंगे तो शायद कल का दिन वाकई में रोशनी लेकर के हमारे जीवन में आएगा। अगर ये बहुत बड़ा अंधेरा हमारे जीवन से हट जाएगा तो ही हमारा देव दर्शन करना सार्थक होगा, तो ही हमारी पूजा आराधना सार्थक होगी, तो ही हमारा आहार दान देना सार्थक होगा, सब कुछ तभी सार्थक होगा जबकि हम इस परंपरा को जो निरंतर हम अपने हाथ से नष्ट कर रहे हैं एक बार फिर से हम इसको अपने जीवन में बनाएंगे तो ही हमारे जीवन की सार्थकता है। इसी भावना से कि आचार्य भगवंतों के द्वारा बताए गए इस जीवन को अच्छा बनाने के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। और अब उन्हीं के बीच में एक तरह से कंपटीशन था कि कौन फर्स्ट आता है, तो दोनों दौड़ते चले जा रहे हैं। तो वो जो मित्र था तो वो अपने दूसरे मित्र से बोलता है कि लगता है कि ये काला वाला घोड़ा जीत जाएगा। तो मित्र कुछ नहीं बोला, उसने फिर से उससे कहा कि क्यों तुम थोड़ा तो कैलकुलेशन कर रहे होगे, ये कितने स्पीड में दौड़ रहा है और ये नीला वाला तो लगता नहीं है पीछे पीछे ही है, ये हालांकि जस्ट पीछे है तो इसके चांसेस तो अब थोड़े और रहेंगे, इसके चांसेस कम है, काले वाला जीतेगा। तो दूसरा वाला जो मित्र था जो चुप बैठा था वो क्या बोलता है कि जीतेगा तो नीले वाला। भाई सामने दिख रहा है, इतना तो कोई भी कैलकुलेशन कर लेगा, एक भी बार तो उसने क्रॉस नहीं किया उस काले वाले को, पीछे पीछे ही दौड़ रहा है नीला वाला, अब तो डेफिनेटली है कि काले वाला जीतेगा। तो बोलता कि तुम्हारे तय करने से तय थोड़ी होता है, वो तो पहले से ही तय है नीले वाला जीतेगा। उसने कहा मतलब? बोले सुनो ये फिल्म है और मैं दूसरी बार देख रहा हूं, जब पहली बार देखी थी ये जीता था उसने। ये तय है, जिन्हें एक बार इस संसार को बहुत गौर से देख लिया है, अपन तो बार बार देख रहे हैं, एक बार भी अगर ठीक से देख लिया कि यहां पर जिन जिन चीजों में हमने आशा करी थी सुख की वहां वहां से दुख मिलेगा, तब कोई भी व्यक्ति किसी चीज को हासिल करने की दौड़ में शामिल हो तो हम उससे आसानी से कह सकते हैं कि व्यर्थ है तुम्हारी ये दौड़, कुछ मिलने वाला नहीं है इसमें, सुख नहीं मिलने वाला है, जीत तुम्हारी नहीं होगी, तुम हमेशा हार जाओगे। लेकिन ऐसा भाव आता ही ये अपनी थोड़ी सी कमजोरी है, कमी है कि हम कितनी बार तो उसी सब चीजों को दोहरा चुके हैं। वो तो एक ही बार फिल्म देखने के बाद ये निर्णय ले चुका है कि काला वाला नहीं नीला वाला जीतेगा, और हम कितनी बार इस संसार के रंगमंच पर कितनी बार दौड़ चुके हैं इन भोग विलास की सामग्री के पीछे, हर बार हारे हैं फिर भी हम ये तय नहीं कर पाए हैं कि हमें इनमें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक आशा फिर भी हमारे अंदर बनी रह जाती है, असल में हम बनाए रखना चाहते हैं। और कोई बात नहीं। हमारी तो आशा कई बार टूटती है, लेकिन हम उसको पुनः पुनः किसी और जगह प्रक्षेपित कर देते हैं, किसी और जगह डाल देते हैं। यहां से आशा टूटती है, दूसरी चीज में आशा जागृत कर देते हैं। पूरी तरह से सब दूर से आशाएं टूट जाए, ऐसा हम अंततः निराश हो जाए, निराश हो जाएंगे तो फिर तो संसार से विमुख ही हो जाएंगे, विरक्त ही हो जाएंगे। हम अपनी आशाओं को एक जगह से टूटती है दूसरी जगह स्थापित कर लेते हैं, शायद इसमें मिलेगा, शायद इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिला कोई बात नहीं, ट्राई वेल अगेन एंड अगेन, इसमें मिलेगा, फिर से करो, फिर से करो। इस तरह हम बदलते रहते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स बदलते रहते हैं। हमने जबकि कई बार उन सब चीजों का अनुभव किया है, फिर भी हम दूसरे संदर्भ में, दूसरे रूप में और फिर से उस चीज से आशा रखने लगते, और इस आशा को हम निराश ना हो जाए इसलिए बनाए रखते हैं। इसका भी एक उदाहरण है ताकि ये समझ में आ जाए, फिर बाद में देखेंगे कि अगर ये आशा हमारी थोड़ी घट जावे या कि पूरी तरह टूट जावे तो आसानी से एक बड़ा काम कर सकते हैं, एक बड़ा कदम और रख सकते हैं अपन आज, छठवां कदम। लेकिन जरा इस उदाहरण से समझ लें कि हम अगर अपनी आशाओं को बनाए रखना चाह रहे हैं, निराश होनी नहीं चाह रहे संसार से, तब फिर नहीं बनेगा, तब फिर तो सिर्फ जो है विचार ही रह जाएगा, जीवन में घटित नहीं हो पाएगा। क्या हुआ, एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा, ट्रेन में यात्रा करते करते और बीच में चेकिंग के लिए कौन आता है, हाँ वो आ गया। वो तो हम सोच रहे थे कि रेलवे वाले बोलेंगे तो सब लोगों को मालूम है कि टीटी आता है, हम सोच रहे थे सिर्फ रेल वालों को मालूम है, ये सबको मालूम है। चेक करने के लिए कोई ना कोई तो आता ही है। कई बार अपने जीवन में भी ऐसा हो चुका, चेक करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है कि कैसी चल रही यात्रा, तब या तो अपन कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं या कि विड्रॉ कर लेते हैं। उस व्यक्ति ने भी जैसे ही टीटी दिखा उसने फौरन अपने पॉकेट वॉकेट में हाथ डालना शुरू किया, ऐसा शो किया कि जैसे मैं टिकट तो खरीद चुका हूं लेकिन निकाल रहा हूं। टीटी ने देखा कि हाँ टिकट होगा जब तो ये पॉकेट वॉकेट में हाथ डाला, तो इस वाले पॉकेट में हाथ डाला वहां भी नहीं, इस वाले में डाला वहां भी नहीं, सब पॉकेट में हाथ डाल के देख रहा, बड़ा मजा। अब वो खड़ा हुआ है वो, और ये जनाब जो अपने ढूंढने में लगे, अब जब सब पॉकेट में नहीं मिला तो फिर उसने अपने जूते के बंद खोलना शुरू किए, तो जूते के बंद खोलना शुरू किए तो टीटी जरा टेंशन में आ गया कि क्या कर रहे हो, उसने का ढूंढ रहा टिकट ढूंढ रहा, बाकी लोग भी जो है सकते में आ गए कि आदमी तो वैसे उतना वैसा नहीं लग रहा है, सीधा साधा लग रहा है, जूते का एक उतार रहा है। तो उसने जूते के बंद खोल करके और फिर जूते उतार करके उसको ऐसे डराया, शायद इसमें रखी हो मिल नहीं रही, टिकट तो ली थी लेकिन टिकट नहीं मिल रही। अब उसने इतनी देर लग गई, अब उसके बाद उसने अपनी अटैची खोली, अटैची में रखी जहां रखी जा सकती थी उसमें सब ढूंढ ली। टीटी कह रहा है कि भैया निकालो जल्दी, उन्हें ढूंढो। कितना समय लग जाएगा अपन लोगों को, संसार में सुख नहीं है ये बात ढूंढने में, पूरी जिंदगी ढूंढ तो रहा हूं, देख रहा हूं सब चीजें कौन कौन में सुखने में, तभी वो रहेगी अभी वहां बंबई में भी जाना रहेगा, दिल्ली घूमना भी रहेगा, शायद वहां सूटे वहां सुख है। अब ऐसा अगर घटित कर ले तो मुश्किल पड़ गई, उसमें तो मजा आ रहा था अब नहीं आ रहा है। पहले तो उसकी कहानी जब चल रही थी जब तो लग रहा था कि कैसा बुद्धू है, और अब कैसा लग रहा है कि हम भी क्या कर रहे हैं, कोई आकर के खड़ा हो जाए कि बोलो बोलो कितना सुख मिला, देख रहा हूं मैं बताता हूं कितना कितना मिला, इसमें कहीं नहीं मिला, ऐसा कह ही नहीं सकते कि कहीं नहीं मिला, निराश हो जाएंगे अंततः। और हम निराश नहीं होना चाहते, हम आशा बनाए रखना चाहते हैं। वो भी यही कर रहा था, अब तो बहुत ज्यादा अति हो गई मालूम, सब में घूमने के बाद उसमें जो एक जोड़ी कपड़े रखे थे उनकी पॉकेट में भी हाथ डाल लिया। अब तो जो है टीपी को थोड़ी गुस्सा आ गई। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर के जब उसमें भी नहीं मिला, सब में नहीं मिला, तो बाजू वाले के पॉकेट में जैसे ही हाथ डालने के लिए भरा कि शायद इसमें रखी होगी मेरी टिकट। सबने कहा कि करते क्या हो, तुम्हारे अपने पॉकेट में क्यों नहीं देख रहे? वो एक पॉकेट को ना सामने वाले को हाथ से पकड़े हुए था, बाकी सबने ढूंढ रहा, तुम अपने वाले पॉकेट में क्यों नहीं देख रहे? तो उसने कहा कि सुनो, एक ही जगह तो शेष है जहां थोड़ी सी आशा टिकी हुई है कि शायद यहां होगी, मैं उससे भी निराश होना नहीं चाहता, वरना उस पॉकेट में हाथ डालूंगा और वहां भी नहीं मिलेगी तब तो बहुत निराश हो जाऊंगा कि टिकट कहां चलेगी। देख रहे हैं ठीक ऐसा ही हम कर रहे हैं, अपने जीवन में झांक करके नहीं देख रहे हैं कि कहां सुख है और कहां मैंने दुख पाया है। सब दूर दूसरे तक के पॉकेट में हाथ डालना मतलब दूसरी चीजों में, इसमें सुख मिलेगा इसमें सुख मिलेगा, यही ना कर रहे हैं अपन। ये तो एक उदाहरण है, पर हमारे अपने जीवन में पूरी तरह से घटित होता है। ऐसा विचार करके हम थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन लाएं तो आगे बढ़ सकते हैं, एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तो हमें खाने पीने की चीजों में और जब चाहे तब खाने पीने में और सुख मालूम पड़ता है, जबकि कितनी कितनी बार और क्या क्या चीजें 56 प्रकार के भोजन भी करके देख लिए, क्षण भर को सुख मिलता है, फिर इसके बाद बेरस हो विपाक समय की सेवत लागे नीके, उसके बाद जिस तरह से वे हमें निराश करते हैं दुख में डाल देते हैं, इस बात का एहसास होते हुए भी हम उसे झुटला रहे हैं। अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अपने जीवन में बहुत परिवर्तन हम कर सकते हैं। अन्नम पानम खाइयम खाद्यम लेयम नाश नाति यो विभावर्याम सच रात्रि भुक्ति वीरता सत्य संकंप मान मना। जिसके मन में प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव उत्पन्न हो गया है, जिसे अब संसार की आशाएं, संसार में सुख की आशाएं शेष नहीं रह गई हैं, वो क्या करता है, चारों प्रकार की भोजन सामग्री को न रात में स्वयं ग्रहण करता है, न दूसरे को ग्रहण करने की सलाह देता है, न दूसरे को ग्रहण करने के लिए बाध्य करता है, न दूसरा कोई ग्रहण करे तो उसका समर्थन करता है। इतना भी घर में रह करके कर सकता है। ये कब होगा, जब हमें इन सब चीजों में